बड़ा ही सरल तरीका श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। भगवान नाम के द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं और रथ यात्रा का जो महोत्सव है वह इसी का सूचक है। किस प्रकार से हम भगवान नाम के द्वारा कीर्तन करके आनंद पूर्वक नृत्य करके भगवत प्राप्ति, भगवत का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है गौर निताय और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, ये हम कलयुग के जीवों के लिए बिल्कुल एक पैकेज है। बड़ा अदरवाइज अन्यथा पूर्व के युगों में भक्ति करना बड़ा कठिन था। वैसे तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी तो सतयुग में ही उनकी स्थापना हो गई थी। ये रथ यात्रा का महोत्सव भी बड़ा प्राचीन महोत्सव है, तब से ही आरंभ था सतयुग में ही। जब जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा सुदर्शन महाराज की जब स्थापना हुई तब से ही ये रथ यात्रा का समारोह मनाया जा रहा है। लेकिन जब 500 वर्ष पूर्व करीब श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए तब उन्होंने इसके महात्म्य को हम सबको समझाया और बतलाया कि किस प्रकार से जगन्नाथ जी की सेवा करके जगन्नाथ जी का रथ में यात्रा में भाग लेकर हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। सुबह हम चर्चा कर रहे थे कि जगन्नाथ जी विशेष कृपालु हैं। ऐसे कोई भगवान नहीं है जो स्वयं अपने मंदिर से निकल कर कृपा देते हैं। कलयुग में क्या होता है, मंदिर में जाने का लोगों के पास समय नहीं है। अभी लोगों को पूछा जाए भक्ति कर लीजिए तो एक ही समय होता है, एक ही जवाब देते हैं, भाई टाइम नहीं है। है कि नहीं? बहुत बार हम भक्तों ने जो प्रचार करने के लिए जाते हैं तो प्रश्न करते हैं कि भैया आप कार्यक्रम में क्यों नहीं आते, आप आया करिए, फोन करिए, मैसेज करिए, एक ही जवाब आता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो जगन्नाथ जी ऐसे भगवान हैं एकमात्र जो स्वयं बाहर निकल जाते हैं। ठीक है भैया तुम मेरे पास नहीं आता, मैं तुम्हारे पास आता हूं, पीछे पकड़ पकड़ के भाग के पकड़ते हैं, एक एक भक्त को पकड़ते हैं, चलो आओ मेरा दर्शन करो, मेरे कीर्तन में भाग लो। बड़ा सुंदर ये जगन्नाथ जी की विशेष कृपा है। और अन्य उत्सवों में भी मंदिरों के ठाकुर बाहर आते हैं लेकिन मुख्यतः उनके जो उत्सव विग्रह होते हैं वही बाहर आते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी ऐसे भगवान हैं जो स्वयं बाहर आ जाते हैं, स्वयं बाहर आके बिल्कुल प्रचार करते हैं, आओ कीर्तन में भाग लो, मेरा नाम जप करो, मेरे साथ नृत्य करो, उसमें भाग लो, और कृपा बांटते हैं, पकड़ पकड़ के भक्त बना रहे हैं। महाप्रभु का यही था, पात्र अपात्र ना देखी स्थान स्थान, कि पात्रता नहीं देखी कि आदमी में योग्यता है कि नहीं, भैया इसको दसवीं में एडमिशन देना है तो नौवीं में पास हुआ है कि नहीं, नहीं देखते हैं कि नहीं, गुरुकुल में भी देखते होंगे ना, आठवीं में अगर देखना है, सातवीं में कोई पास हो तभी उसको आठवीं में एडमिशन देते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी और महाप्रभु का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो दो दो समन्वय है, उसमें कोई योग्यता का विचार नहीं किया जाता, केवल भगवान के सानिध्य में आना है। भगवान स्वयं पकड़ पकड़ कर पकड़ते हैं, बिल्कुल लेकर आते हैं कि भैया मेरी भक्ति करो, मेरा भजन करो। और उसी भाव को लेकर श्री प्रभुपाद जी ने संपूर्ण विश्व में ये रथ यात्रा का समारोह आरंभ किया। बड़ा ही जगन्नाथपुरी में आज भी जो लोग गए हैं उन्होंने अनुभव किया होगा, 4 तारीख को जो रथ यात्रा हुई तो लाखों लोग एकत्रित होते हैं उस रथ यात्रा में, लाखों लोग, करीब 10-11 लाख लोग उस रथ यात्रा में एकत्रित होते हैं जगन्नाथ जी को श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर पर लेके जाने के लिए। तो वहां पर रथ यात्रा में आज भी, और उसी रथ यात्रा को श्री प्रभुपाद जी जब उससे पूर्व जब भारत में जब अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे तो कुछ चीजें उनको समझ में नहीं आती थी, भारत में ये क्या हो रहा है, किस प्रकार से ये देश चलता है। तो एक चीज जो उनको ये समझ नहीं आती थी वह थी ये जगन्नाथ रथ यात्रा। तो वो लोग विचार करते थे, बड़ा संशोधन करते थे, रिसर्च करते थे, ये समझ में नहीं आता ये क्या है, लकड़ी के पुतलों को लेकर इतने बड़े बड़े रथ पर चढ़ाकर ये भारतीय लोग, लाखों लोग एकत्रित हो जाते हैं, एक दिन सुबह आते हैं और रात को सब गायब हो जाते हैं। जो लोग जगन्नाथपुरी गए होंगे देखा होगा, इस सुबह 10 लाख लोग होंगे और रात को अगले दिन देखेंगे तो 10,000 लोग रहेंगे, सब गायब हो जाते हैं। तो जो अंग्रेज शासक लोग थे बड़े विचार करते थे ये हो क्या रहा है, ये लकड़ी को पुतलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर खींचने के लिए 10 लाख लोग आते हैं, कहां से आ जाते हैं पता नहीं, सुबह आते हैं शाम को सब गायब हो जाते हैं। तो बड़ा विचार कर रहे थे, बड़ा प्रयास कर रहे थे कि हम उनके हिसाब से हम लोगों को पढ़ा लिखा बना देंगे और उसको सब ये त्याग देंगे। लेकिन श्री प्रभुपाद जी ने ऐसा प्रचार प्रसार का कार्य किया कि आज लंदन में भी रथ यात्रा मनाई जाती है। जय श्री प्रभुपाद की। 1973 में जब सर्वप्रथम रथ यात्रा वहां लंदन में आयोजन किया गया तो वहां पर बड़ा प्रसिद्ध न्यूज़पेपर है द गार्जियन, उसके पहले पृष्ठ पर, पहले पन्ने पर बड़ा सुंदर रथ का फोटो आया था और साथ में लिखा हुआ था इस्कॉन रथ यात्रा इज राइवल टू द नेल्सन कॉलम इन ट्रफलगर स्क्वायर। नेल्सन जो कॉलम है बड़ा ही प्रसिद्ध वहां की मूर्ति है वहां पर लंदन में, तो उसके प्रथम पृष्ठ पे यह समाचार आया था कि रथ यात्रा इस्कॉन की रथ यात्रा उस जो है नेल्सन कॉलम जो प्रसिद्ध वहां का स्मारक है उससे भी ऊंचा रथ का निर्माण भक्तों ने किया था और उसको भी वह मात दे रहा है। इस प्रकार से जो है वहां पर रथ यात्रा का विवरण आया था। श्री प्रभुपाद ने की कृपा से आज विश्व भर के सभी प्रमुख स्थानों पर रथ यात्रा का समागम किया आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत सुबह श्री निमायपुर चर्चा कर रहे थे हमारे भक्त यहाँ पर कि किस प्रकार से सर्वप्रथम श्री प्रभुपाद जब सैन फ्रांसिस्को में थे, अमेरिका में थे, तो वहां पर उनकी एक शिष्या थी मालती माता जी, वह एक भारतीय किसी स्टोर पर गई और वहां एक छोटी सी गुड़िया उनको पीले रंग की दिखी और उस पर लिखा था मेड इन भारत, भारत में बनी हुई है। वैसे आजकल तो भगवान भी चाइना में बन के आते हैं सब विग्रह वगैरह, बट उस समय वो भारत से बना हुआ आया था विग्रह लकड़ी के, वो लेके आ गए श्री प्रभुपाद जी के पास और प्रभुपाद जी ने देखा अरे भले वाह, इसके साथ कोई और दो भी थे क्या छोटी छोटी गुड़िया, बोले हाँ लेकर आ जाइए उनको भी ले आइए। तो वो दोनों गए, मालती माता जी और एक और प्रभु जी साथ में गए और उन दोनों को भी लेकर आ गए। जब श्री प्रभुपाद जी ने देखा तो वाह, प्रभुपाद जी ने बोला आज जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा महारानी का अमेरिका में स्वागत किया गया। वहां पर श्री प्रभुपाद जी तुरंत उनको साष्टांग दंडवाद प्रणाम किए और बाद में श्री श्याम सुंदर प्रभु प्रभुपाद जी के एक और शिष्य, उन्होंने सर्वप्रथम मूर्तियों को जो है मूर्ति की रचना की और वहां पर निर्माण किया, बनाया जगन्नाथ श्री बलदेव सुभद्रा महारानी और सुदर्शन जी की। तो ऐसी जगह पर जहां पर कहीं कृष्ण का नाम ही नहीं सुना था वहां पर श्री प्रभुपाद जी ने प्रचार प्रसार किया। जहां पर श्री प्रभुपाद ने जहां स्थापना की वहां पर मुझे याद नहीं आ रहा है किस मंदिर पे, एक मंदिर में तो भक्त लोगों ने क्या किया कि वहां गौर निताय थे और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भी थे, तो उन्होंने सोचा कि ऑल्टर छोटा है तो एक रिवॉल्विंग टेबल लगा दिया नीचे और उस पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रख दिया और गौर निताय को रख दिया और वो जो टेबल था नीचे का जो पट क्या बोलते पाठ था वो घूमता था, तो दर्शन करने जाए तो कभी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आ गए और प्रभुपाद दर्शन कर रहे थे, थोड़ी देर में देखा गौर निताय आ गए और फिर घूम गया पाठ और फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आ गए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने उनको समझाया कि ये विग्रह है, कोई ऐसा वो यानी पुतला नहीं है जिसको आप ऐसा घुमा रहे हैं। एक और स्थान पर श्री प्रभुपाद गए, शायद सैन फ्रांसिस्को में ही, वहां पर स्थापना की थी। प्रभुपाद जी दर्शन के लिए आए और वहां पर देखा उन्होंने कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ऑल्टर में नहीं है, तो कहाँ पर गए, कहाँ है, बोले हमने सोचा वो शायद भगवान बोर हो गए होंगे, उनको हम समुद्र के किनारे पर लेके घुमाने के लिए लेके चले गए। इस प्रकार प्रभुपाद जी ने कहा कि ऐसे नहीं लिया जाता, जगन्नाथ जी का एक उत्सव मनाएंगे हम, रथ यात्रा का महोत्सव मनाएंगे। तब प्रभुपाद जी ने बताया कि ऐसा ऐसा रथ यात्रा का महोत्सव होता है, उनको एक बड़े सुंदर रथ पे ले आया जाता है। प्रभुपाद जी अंग्रेजी में उनको कार्ट रथ बताते तो समझ में नहीं आता था, बोले कार फेस्टिवल करेंगे, एक बड़ी सुंदर बढ़िया गाड़ी लेंगे। तो पहला फ्लैट बेड ट्रक था उसमें जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को लेकर जो है रथ यात्रा का समारोह श्री प्रभुपाद जी ने किया। इसलिए बड़ा ये महत्वपूर्ण है रथ यात्रा का भाव और रथ यात्रा का जो महोत्सव है इसका आंतरिक अर्थ समझना बड़ा अत्यंत आवश्यक है। हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव का अर्थ है कि अपने अंदर हृदय में भगवान को आमंत्रित करना, अपने हृदय में भगवान को स्थित करना। जिस प्रकार से हम किसी भी शुद्ध शुद्ध स्थान पर जाना पसंद करते हैं, कोई भी अगर गंदा स्थान हो उस पर कोई जाना पसंद करेगा, कहीं कचरा गिरा हो मैला हो नहीं जाना पसंद करेगा। उसी प्रकार से जब भगवान को भी हमें हृदय में आमंत्रित करना है तो हमें अपने हृदय का शुद्धिकरण करना है। तो यह रथ यात्रा के महोत्सव के माध्यम से हम भगवान को अपने हृदय में आमंत्रित कर रहे हैं कि हे जगन्नाथ, हे बलदेव, हे सुभद्रा महारानी, आप हमारे हृदय में स्थान ग्रहण कीजिए। और भगवान नाम के माध्यम से हम हृदय का शुद्धिकरण करते हैं। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा, कि भगवान नाम के माध्यम से ही इस कलयुग में हम अपने हृदय का शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो ये रथ यात्रा का यही भाव है कि हम भगवान को हृदय में आमंत्रित करें। इसका गूढ़ रहस्य श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला के माध्यम से स्पष्ट करते हुए बतलाते हैं कि जिस प्रकार जब श्री द्वारका में भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में 11 वर्ष रहने के पर्यंत मथुरा कंस इत्यादि का वध करने के पश्चात द्वारका में वास किए, तो गूढ़ रहस्य हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं श्री रथ यात्रा का, जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया। रथ यात्रा इतने वर्षों से हो रही थी लेकिन इस गूढ़ रहस्य को श्री महाप्रभु जी ने प्रकट किया और हम सबके सामने प्रस्तुत किया श्री चैतन्य चरितामृत में अपनी लीला के माध्यम से। तो उस समय जब श्री कृष्ण श्री द्वारका में अपने 16,108 रानियों के साथ निवास किया करते थे, वहां पर उतना सब ऐश्वर्य सब कुछ भोग इत्यादि होने के पश्चात भी कृष्ण का ध्यान केवल श्री वृंदावन में ही हुआ करता था और वृंदावन की लीलाओं का ही स्मरण किया करते थे। रुक्मणी सत्यभामा कालिंदी भगवान की जो रानियां थी वह लोग भी विचार किया करती थी कि हमारे साथ रहते हैं लेकिन उनका ध्यान कहीं और रहता है। रात में कई बार उठते हैं और राधा रानी हे ललिता हे विशाखा इन गोपियों का नाम उच्चारण करने लगते हैं। ते रह हमारे साथ रहे हैं लेकिन चिंतन श्री वृंदावन धाम हे नंद बाबा हे यशोदा माई इस प्रकार का चिंतन किया करते थे भगवान श्री कृष्ण। उसी संदर्भ में भगवान को जब श्री वृंदावन का चिंतन किया करते थे तो कई बार बिल्कुल ऐसा विलक्षण स्थिति हो जाया करती थी। तो इसका उपाय करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने श्री ब्रह्मा जी को और श्री विश्वकर्मा जी को आमंत्रित किया कि एक वृंदावन का प्रतिरूप निर्माण किए श्री द्वारका में, जैसा वृंदावन का जो पूरा माहौल है उस प्रकार का माहौल आप मेरे यहाँ श्री द्वारका में निर्मित कर दीजिए। वहां पर विश्वकर्मा जी ने जैसे यशोदा माई का पुतला, श्री नंद बाबा का पुतला, श्री मधुमंगल भगवान के ग्वाल बालों के पुतले, गायें, बंदर, जो भी सब वहाँ के ब्रजवासी गोपियाँ गोपों के जो हैं वहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित की विश्वकर्मा जी ने, और कृष्ण वहीं पर श्री वृंदावन का स्मरण किया करते थे। उसी प्रकार से यहाँ पर जो श्री वृंदावन धाम का प्राकट्यकरण हुआ है यह उसी के ही क्या बोलते हैं उसी के ही उदाहरण के रूप में, ताकि भगवान के भक्त भी हम लोग सब मिलकर वहां पर उस वृंदावन में जाके कृष्ण का स्मरण कर सकें, उनकी लीलाओं का चिंतन कर सकें, श्री वृंदावन धाम का स्मरण कर सकें। उसी उद्देश्य से यहाँ पर श्री वृंदावन धाम का निर्मिति हुई है। तो उस प्रकार से जब यह सब गोपियां श्री कृष्ण श्री वृंदावन धाम का चिंतन किया करते थे, तत्पश्चात एक बार सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में सब द्वारका वासियों ने निर्णय किया कि हम लोग कुरुक्षेत्र जाएंगे, वहां पर जो है 5 विशेष कुंड हैं, वहां पर हम स्नान इत्यादि करेंगे। उस समय कथा कि सूर्य ग्रहण इत्यादि के समय धाम में जाना, भगवत भजन करना, तो सब द्वारका वासियों ने निर्णय लिया कि हम लोग वहां पर जाएंगे। तो जब है श्री कृष्ण और सब यदुवंश द्वारकावासी वहां उपस्थित हुए, तब श्री वृंदावन धाम से भी नंद बाबा यशोदा माई इत्यादि सब गोपियों ने भी वहां पर निर्णय लिया कि हम लोग भी कृष्ण का दर्शन करने के लिए श्री कुरुक्षेत्र धाम में आएंगे। जैसे ही वे कुरुक्षेत्र में पहुंचे, जब श्री राधा रानी और गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप के दर्शन किया तो बहुत आनंदित हुए, लेकिन साथ ही साथ एक मन में विचार था उनके कि वृंदावन में तो कृष्ण इस प्रकार के नहीं दिखाई देते थे। जब वृंदावन में थे कृष्ण तो वह तो बिल्कुल सादा एक ग्वाले का जो है पोशाक पहनते थे, सादी पगड़ी मोर मुकुट लगाकर घुमा करते थे, और यहाँ तो इतना विशाल सैन्य के बीच घिरे हुए और बिल्कुल आभूषणों से जड़ित, और बिल्कुल ही एक क्या कहते हैं जैसा एक रॉयल भव्य श्रृंगार के साथ वहां प्रस्तुत थे। तो यह गोपियां देखकर मन में विचार कर रही थी कि ये कृष्ण वही है, लेकिन ये वही नहीं है। वृंदावन में जो कृष्ण है वास्तव में वे कृष्ण का घर है। कृष्ण इसलिए सबसे ज्यादा सुख का अनुभव श्री वृंदावन धाम में करते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति बाहर कहीं रहे और जब घर लौटकर आए तो कैसा आनंद का अनुभव करता है कि नहीं, बाहर कितना भी आप घूम के आ जाओ, किसी भी होटल में रह जाओ, कहीं भी रिजॉर्ट में रह लो, या किसी भी स्थान में रहो आप बाहर जाके, या ऑफिस में चले जाओ, लेकिन जो एक सुख का अनुभव एक व्यक्ति अपने घर में करता है, उसी प्रकार से श्री वृंदावन धाम श्री कृष्ण का अपना निज धाम, निज घर है। जितना वो आनंद का अनुभव, जितना वो अपने स्वाभाविक अवस्था में रहते हैं, वो और कहीं नहीं, केवल श्री ब्रज भूमि, ब्रज धाम में ही रहते हैं। इज गॉड वृंदावन, इज गॉड एट होम। तो घर में जैसे भगवान जैसे व्यक्ति रहता है, बिल्कुल नॉर्मल जैसे स्वाभाविक अपना जो रहता है, वह दर्शन हमें श्री वृंदावन धाम में भगवान का होता है। तो यहां पर गोपियों ने दर्शन किया कृष्ण के ऐसे भव्य रूप का, तो मन में विचार कर रहे थे कि कृष्ण को हमें वृंदावन में जाकर देखना है, हमें इस भव्य रूप में वो अनुभव नहीं आ रहा जो हम श्री ब्रज भूमि में कृष्ण का अनुभव किया करते थे। तो वह मन से भगवान श्री कृष्ण के रथ को श्री वृंदावन धाम की ओर खींच कर लेके जाती हैं। तो यह श्री वृंद से जगन्नाथ रथ यात्रा का जो भाव यही है कि हम भगवान को खींच कर श्री वृंदावन धाम लेकर जा रहे हैं। वृंदावन धाम भगवान का जो घर है, वहां के सब जो है ब्रजवासी भगवान को अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। यहां पर हमने बहुत सुंदर गोपी गीत गाया, बड़ा ही सुंदर गीत है जो भगवान को बहुत पसंद है, गोपियों के विरह भाव में जो ब्रज का जो भाव है, प्रत्येक ब्रजवासी का एकमात्र भाव यही है कि कैसे कृष्ण को हम प्रसन्न करें, कैसे जगन्नाथ को प्रसन्न करें। यह एकमात्र भाव प्रत्येक ब्रजवासी यही विचार करता है कि मैं ये सांस ले रहा हूं, इस सांस लेने से कृष्ण को आनंद मिलेगा कि नहीं, मैं ये भोजन कर रहा हूं, कृष्ण को इससे आनंद मिलेगा कि नहीं, मैं ये कपड़े धारण करूंगा, कृष्ण को इससे आनंद मिलेगा कि नहीं, यह मैं विचार कर रहा हूं इसमें कृष्ण को आनंद मिलेगा क्या नहीं। तो प्रत्येक विचार, प्रत्येक जो कार्य है श्री ब्रजवासियों का एकमात्र यही है कि कृष्ण को कैसे आनंद मिले। और गोपियों की जो सीमा की जो क्या भक्ति की जो पराकाष्ठा है, भगवान के जितने भी भक्त हैं उन भक्तों में जो भक्ति की जो पराकाष्ठा है, जो सुप्रीम भक्ति है, वो भगवान की सखियों गोपियों में दिखाई। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण का एक ये लीला है, भगवान कृष्ण का सिर दर्द हुआ, वैसे कोई भगवान का नहीं होता है, पर एक बार वो लीला में भगवान कहते हैं कि हमारा सिर दर्द हो रहा है, तो सबने किसी ने सेरिडॉन ला के दिया, किसी ने क्रोसिन लाकर दे दिया, नहीं ऐसा नहीं, तो सब विचार कर रहे थे क्या किया जाए, भगवान का सिर दर्द हो रहा है क्या किया जाए, भाई क्या दवाई लेके आए, पैरासिटामोल दे के, क्रोसिन दे के, सब विचार कर रहे थे, कोई जड़ी बूटी ला के दे दें या अश्वगंधा ला के दे दें, या कौन सा हर्बल कॉफी अभी रस्ते में पिला रहे थे जगन्नाथ जी को, बड़ा किस प्रकार का ये, ऐसे सिर दर्द दूर हो जाएगा। नहीं, भगवान ने कहा नहीं, कृष्ण से पूछा क्या किया जाए कि आपका ये सर दर्द ठीक हो जाएगा, तो कृष्ण ने कहा कि मेरे को भक्तों का रज लाके दे दो, मेरे भक्तों का जो है चरणों की धूली लाकर दे दीजिए। तो नारद मुनि भी वहां उपस्थित थे, नारद मुनि ने कहा चलो बस ये तो बड़ा सरल उपाय है, मैं जाके लाके देता हूं। तो भगवान के अनेक भक्तों के पास, नारद मुनि तो पूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण कर सकते हैं, तो वह चले गए, अनेकों भक्तों के पास गए कि भाई भगवान श्री कृष्ण का सिर दर्द हो रहा है, उनके सिर में दर्द है, आप में से कोई अपने चरणों की धूली देगा? तो सब भक्त लोग जानते थे कि अपनी चरणों की धूली भगवान के सिर पर डालने का अर्थ क्या है, करोड़ों अरबों वर्षों तक नरक में वास प्राप्त होगा। तो सब भक्त लोग डर गए, नारद मुनि ये क्या बात कर रहे हैं, मैं अपने चरणों की धूली कृष्ण के सिर पर डालूं, मैं करोड़ों वर्षों तक नरक में सड़ता रहूंगा। इस प्रकार से अनेकों भक्तों के पास जाने के बाद नारद मुनि विचार कर रहे थे, तो काम बन ही नहीं रहा भैया, क्या करें, श्री कृष्ण का सिर दर्द ठीक ही नहीं होगा, क्या किया जाए। बड़ा विचार करने के पश्चात जब श्री वृंदावन में गोपियों के पास आए तो गोपियों को कहने लगे कि श्री कृष्ण का सिर दर्द हो रहा है भाई। तो बोले क्या करना पड़ेगा, हम सब कुछ कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो कहने लगे कि आपके चरणों की रज चाहिए। बोले तुरंत तैयार है हम लोग, सब गोपियां अपने अपने चरणों से रज निकाल के कटोरे में डाल के देने लगी, बाल्टी भर के देने लगी कि ये ले लीजिए रज, ले जाइए। और नारद मुनि भी बड़े हैरान हो गए, उनको समझाने लगे आपको मालूम है इस रज देने का अर्थ क्या है? बोले हमें तो मालूम है, ज्ञात है, क्या है इसका अर्थ? बोले क्या है? बोले ये रज से आपकी चरणों की रज यदि श्री कृष्ण के सिर पर चढ़ जाए, उसका अर्थ है कि आपको करोड़ों वर्ष तक नरक में वास करना पड़ेगा। तो गोपियों ने एक क्षण भी नहीं विचार किया, नारद मुनि को कहने लगे कि हमें यदि करोड़ों वर्ष तक भी नरक में सहन जाना पड़े और कृष्ण का एक क्षण के लिए भी सिरदर्द दूर हो जाए तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, केवल एक क्षण के लिए भी उनका सिर दर्द ठीक हो जाए, उसके लिए हमें करोड़ों वर्ष तक नरक में भोग करना पड़े, हम उसके लिए भी तैयार हैं। यह श्री वृंदावन के वासियों का भाव है। इस भाव के आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण वृंदावन में आना चाहते हैं, श्री जगन्नाथ वृंदावन में आना चाहते हैं। तो यह रथ यात्रा का भाव है, इस भाव को अपने अंदर हमें धीरे 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 जब हृदय का शुद्धिकरण होगा, जब काम वासना की कमी होगी, तब धीरे धीरे भगवान का प्रेम हमारे अंदर उद्दीपन होगा। इस विलक्षण रूप में श्री जगन्नाथ जी क्यों अवतरित हुए, इस छोटी सी कथा के साथ हम इस आज के इस सत्संग को विराम देंगे। ये विलक्षण स्वरूप है, जैसे हम कृष्ण का त्रिभंग रूप दर्शन करते हैं श्री वृंदावन बिहारी श्री मदन मोहन देव जी का, लेकिन यहां पर ये इस प्रकार का एक अद्भुत रूप, एक तरह से अधूरा सा लगता है, ये किस प्रकार से हाथ हैं और चरण भी विचित्र हैं और आंखें भी इतनी बड़ी बड़ी, ये क्या रूप है? तो वृंदावन में द्वारका की ही ये लीला है। भगवान श्री कृष्ण जब चिंतन किया करते थे राधा रानी गोपियों के विषय में, तो सब रानियों ने मिलकर कहा कि भैया ये क्या है ब्रजवासियों का प्रेम कि हमारे साथ रहते हैं और ध्यान किसी और का करते हैं, ये कैसे कृष्ण है, रहे हमारे साथ रहे, खाना हमारे साथ रहे, खाना हम खिला रहे, सेवा हम करें और ध्यान वृंदावन का, ये क्या बात है भाई, ये तो नहीं चलेगा। तो जानना चाहते थे कि क्या है उनका भक्ति भाव, लेकिन विचार कर रहे थे कि कौन बताएगा। तो सबको ध्यान आया कि एक हमारे बीच रह रही हैं वसुदेव जी की पत्नी श्री रोहिणी देवी, सो ब्रज भूमि में भी यशोदा के साथ श्री कृष्ण और बलराम जी का पालन पोषण में उनको परम सौभाग्य और लाभ प्राप्त हुआ। तो सब लोग रोहिणी जी से पास गई, 16108 रानियां अनुमोदन करने लगी कि हमें ब्रज की कथा का श्रवण करना है, ब्रज की लीलाओं का श्रवण करना है, ऐसा क्या है ब्रजवासियों में कि कृष्ण सदैव उनका चिंतन करते रहते हैं, रहते हमारे साथ हैं, ध्यान कृष्ण का श्री वृंदावन धाम में है। तो रोहिणी देवी कहने लगी मैं ये कथा को तो आपको सुनाऊंगी, लेकिन एक ध्यान रखना पड़ेगा हमारे कि कहीं कृष्ण और बलराम नहीं आ जाने चाहिए, वो कथा को सुन लेंगे तो फिर उनका भाव विभोर हो जाएंगे, हृदय विवल हो जाएगा और फिर पता नहीं किस भाव में चले जाएंगे, इस प्रकार से वो विचार करने लगे। ठीक है, बोले जब भगवान श्री कृष्ण अपने असेंबली में होंगे, सुधर्मा महल में होंगे, सुधर्म सभागृह में होंगे, तब हम ये कथा एक हॉल में करेंगे और बाहर पर सुभद्रा महारानी को खड़ा कर देंगे, ताकि कृष्ण बलराम आए तो हमें बता दें, हम चुप हो जाएंगे या उनको अंदर आने नहीं देंगे। तो ये बड़ा सुंदर भव्य कार्यक्रम का अनुष्ठान किया गया और वहाँ पर श्री रोहिणी देवी भगवान श्री कृष्ण की सुंदर लीलाओं को ब्रजवासियों के साथ जो सुंदर आदान प्रदान हुआ, श्री गोपीजनों के साथ जो भगवान का रास नृत्य इत्यादि अत्यंत सुंदर लीलाओं का जब वर्णन कर रही थी, तब सुभद्रा जी जो बाहर सुन रही थी उन लीलाओं को, तो वह भी भाव विभोर हो गई, उनकी भी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और बहुत ही ध्यान पूर्वक भाव में आकर दिव्य आनंद का अनुभव करते हुए श्री ब्रज की लीलाओं को श्री सुभद्रा महारानी बिल्कुल भाव में चली गई। और उसी समय कहते हैं ना, जहां भगवान का कीर्तन होता है वहां भगवान अपने आप पहुंच जाते हैं। ये भगवान का एड्रेस है, यद गायंती मद भक्तम, जहां भगवान के भक्त लोग कीर्तन करते हैं भगवान वहां अपने आप पहुंच जाते हैं। जहां भगवान का यशगान किया जाता है वहां भगवान स्वयं अवतरित हो जाते हैं उस स्थान पर। तो जैसा ही ये बड़ा सुंदर श्री ब्रज कथा का महोत्सव हो रहा था, सुभद्रा महारानी बाहर खड़ी हैं, कृष्ण और बलराम वहां आ जाते हैं और वह भी कान लगा के श्री ब्रज की लीलाओं का श्रवण करने लगते हैं। और जब ब्रज की लीलाओं का श्रवण करते हैं, श्री नंद यशोदा के प्रेम के विषय में श्रवण करते हैं, श्री गोपीजनों के प्रेम के विषय में, उनके बलिदान के विषय में जब श्री कृष्ण स्मरण करते हैं, जब श्रवण करते हैं, तो उनका हृदय भी भाव विभोर हो जाता है, भाव में आ जाते हैं, उनके बिल्कुल आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, बिल्कुल एकदम विशाल आंखें हो जाती है, हाथ अंदर सिकुड़ जाते हैं, चरण अंदर सिकुड़ जाते हैं। और जैसा ये रूप है, ऐसा अद्भुत रूप वहां श्री कृष्ण बलराम श्री सुभद्रा महारानी का प्रकट हो जाता है। और श्री नारद जी आकाश मार्ग से जब इस सुंदर रूप का दर्शन करते हैं तो बड़े आह्लादित हो जाते हैं, बड़े आनंदित हो जाते हैं कि मैंने ये दर्शन कर लिया, मैंने ये अद्भुत दर्शन कर लिया। ऐसा विलक्षण दर्शन श्री कृष्ण बलराम श्री सुभद्रा महारानी का कभी किसी ने नहीं दर्शन किया था। तो नारद मुनि भी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, वहां पर अवतरित होते हैं और भगवान श्री कृष्ण बलराम श्री सुभद्रा महारानी से रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं कि यह सुंदर भव्य कृपा का जो आपका रूप है इसे प्रकट कीजिए इस धरातल पर। तो वही फिर सत्ययुग में बड़ा सुंदर प्रसंग है, महाराज इंद्रदम्न द्वारा की प्रेरणा से यह सुंदर रूप जो है प्रकट हुए। ये बड़ा ही कृपा का जो है, जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है, सी ब्रज स्मरण, ब्रज चिंतन, ब्रज के भक्तों का चिंतन करते हुए जो भाव विभोर का जो रूप है, वह रूप हम जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं। क्योंकि भगवान श्री ब्रज भूमियों के भक्तों का प्रेम का स्मरण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो उसी भाव में कृपा का भाव विस्तृत कर रहे हैं इस रूप में भगवान, श्री कलयुग में खासकर श्रीमान गौर निताय और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, ये जो बिल्कुल जो है कॉम्बिनेशन है, कृपा का सागर बोलते हैं ना, कृपा का समुद्र के रूप में विस्तृत हो रहा है। भगवान नाम के द्वारा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की सेवा पूजा इत्यादि के द्वारा। यहाँ पर बड़ा सरल है, श्रील प्रभुपाद जी ने स्थापना की गौर निताय की संपूर्ण विश्व में, गौर निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। गौर निताय को प्रसन्न करना है तो क्या करना है, कीर्तन करना है, बड़ा सरल उपाय है, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। घर में गौर निताय की पूजा करिए, कीर्तन करिए, जगन्नाथ जी के लिए भी कीर्तन करिए, वे प्रसन्न हो जाते हैं। और भोग लगाइए, विशाल भोग लगाया जाता है जगन्नाथपुरी में, तो कितने 56 बार करीब या 56 भोग लगाए जाते हैं, हर एक थोड़ी देर में भोग लगाया जाता है पूरे प्रचुर मात्रा में। और जगन्नाथ जी का महाप्रसाद की भी ऐसी महिमा है कि उसको प्रसाद को स्वीकार करके जो है भक्ति का हृदय में उद्दीपन हो जाता है। तो ये बड़ा सरल उपाय दिया है भगवान ने, जगन्नाथ जी ने भी, कि भैया ठीक है कलयुग के जीव हैं, तपस्या इत्यादि तो नहीं कर पाएंगे, प्रसाद तो खा सकते हैं कि नहीं, नहीं, किसी को उसमें कष्ट है प्रसाद खाने में? सबको अच्छा लगता है कि नहीं? तो जय जगन्नाथ तो बोलिए जय जगन्नाथ। जिसको प्रसाद खाना अच्छा लगता है वो बोले जय जगन्नाथ। हाँ, तो सबको अच्छा। ये बड़ा सरल उपाय दे दिया है जगन्नाथ जी ने कि ठीक है भैया भोग लगाइए, 56 भोग लगाइए। अनेकों स्थानों पर 56 भोग लग रहा है। प्रभुपाद जी की कृपा से लाखों करोड़ों घरों में जगन्नाथ जी आ गए और सबको वहां अनेकों सुंदर सुंदर व्यंजन का भोग लगता है और प्रसाद का वितरण होता है। और श्री महाप्रभु के द्वारा हम शिक्षण के द्वारा सीख सकते हैं कि किस प्रकार से रथ यात्रा में आकर भाग लेकर केवल रथ यात्रा की रस्सी खींचने से, ऐसा कहा है स्कंद पुराण में, कि जो एक बार खींच लेता है उसको जन्म मृत्यु के समय जब यमराज आते हैं, जब वो पूरा फिल्म चलती है ना, जब यमराज आते हैं तो पूरा फिल्म दिखाया जाता है हमारे को, नहीं कोई बॉलीवुड का फिल्म नहीं, हमारे जीवन का चलचित्र दिखाया जाता है। बेटा तुमने ये पाप किया था, इधर ये किया था, ये गड़बड़ किया था, इधर धोखा दिया था, इसके बारे में बुरा सोचा था। लेकिन जहां पर वो रथ यात्रा का टाइम आ जाता है, टिंग टिंग कैमरा स्टॉप, वहीं फिल्म खत्म। वह स्मरण आपको आ जाता है, रथ यात्रा का स्मरण, जगन्नाथ जी का स्मरण आ जाता है और वहीं पर वो कैमरा रुक जाता है और भगवान यमदूत भाग जाते हैं फिर। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम जगन्नाथ जी को अपने हृदय में आमंत्रित करें भगवान नाम का आश्रय लेकर। श्रील प्रभुपाद जी ने बड़ा सरल मार्ग हम सबको दिया है, तो हम सबको बिल्कुल अथक प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना करें कि उनके बताए हुए मार्ग पर, श्री प्रभुपाद जी के मार्ग पर हम सब चल सकें। क्या है, रथ यात्रा के दिन इतना सुंदर कीर्तन होता है, जगन्नाथ जी को भोग लगता है तो बड़े प्रसन्न होते हैं। जब कोई व्यक्ति प्रसन्न होता है तो वो कृपा बांटता है, नहीं आदमी बड़ा खुश होता है तो चलो भैया, जब आदमी बहुत खुश होता है तो बोलता है कि ठीक है भैया क्या चाहिए तुम्हें, कुछ मांगने वाला भी कोई याचक आ जाता है तो भगवान बोलते हैं, याचक क्या बोलते, क्या चाहिए तुम्हें, 100 रुपए चाहिए, ले ले भैया खुश है, आप बहुत खुश हो तो कोई भी आपसे कोई मांगने के लिए आ जाए तो क्या करते हैं आप, ठीक है भैया ले ले जो तुम्हें चाहिए ले ले, ये चाहिए ठीक है ये ले ले। उसी प्रकार से आज जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का महोत्सव हुआ है, इतना सुंदर कीर्तन नृत्य इत्यादि हुआ है, भोग लगे हैं तो जगन्नाथ जी बहुत प्रसन्न है। जैसे बोलते हैं ना बहती गंगा में हाथ धोना, अभी गहरा जगन्नाथ जी बड़े प्रसन्न है, तो ये प्रसन्न है तो अभी मौका का फायदा ले लेना चाहिए। हम सबको जगन्नाथ जी के सामने करबद्ध होकर प्रणाम करके जगन्नाथ जी को प्रार्थना चाहिए कि भैया आज आप बड़े प्रसन्न हैं, थोड़ा हम पे भी कृपा कर दो, जगन्नाथ जी आज आप विशेष प्रसन्न हैं, आइए सब लोग हम लोग जगन्नाथ जी से मिलकर प्रार्थना करें कि हम आपकी सेवा कर सकें, भगवान नाम का आश्रय ले सकें। जय श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की, श्री सुदर्शन महाराज की, श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी देव की, श्री गौरंग महाप्रभु की, श्री वृंदावन धाम की। हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की, जगन्नाथ महाप्रसाद की। दीबो हरे कृष्णा।
प्रभु जी सुंदर रूप से जगन्नाथ का कथा बताया, कृष्ण भक्ति का सरल रूप से कैसे लाभ कर सकते उसके बारे में भी बताया। आइए प्रभु जी को धन्यवाद देंगे, 3 बार हरि बोल बोल के, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ब्रजेंद्र प्रभु की जय।
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।